This is a News Laundry podcast, and you're listening to NL Conversations.
Welcome to another election show. We are back on the road to cover Lok Sabha elections. This time, another election show is going to be very special because this is the first time that we are covering Lok Sabha elections. So far, you've seen Atul, Dhanya and me covering state elections. This is the first time that we are going to give you big picture Lok Sabha shows. The voter list is still being finalized, but we know that about 100 crore people are going to vote this election, and almost 20 crore of these are going to be young people under the age of 29. Through this show over the next 2 months, we're going to bring you people's issues and issues that concern these voters. There's one more reason why this show is very special, and that is that it's completely ad-free. We guys do not take any advertisements in election season, that too, from governments or from corporations. We only depend on you guys to power our election reportage. If you guys have not supported us so far, I urge you to please log on to newslaundry.com/election fund, choose an amount that's convenient to you, and power our election show. Power another election show. Be our sponsors. Now, without any delay, let's quickly go to Atul and he'll tell us where we are today.
So, जिस जगह पर हैं वो बहुत खास जगह है और उत्तर प्रदेश की जो 8 लोकसभा सीट्स पहले चरण में चुनाव जहां पर होने जा रहा है उनमें से ये एक सीट है। रामपुर की लोकसभा सीट 102 सीटें हैं पूरे देश में जहां पर पहले चरण में चुनाव होगा। रामपुर की बात मैं करूं तो कहा जाता है कि आजम खान एक नेता हैं जिनका इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर एक बहुत बड़ा असर है, उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, उनकी अपनी जो छवि है, जो कद रहा, उसका बहुत असर यहाँ के चुनावी नतीजों पर पड़ता रहा। लेकिन पिछले कुछ चुनावों के नतीजों को अगर हम थोड़ा सा देखें तो उस कद को लेकर, खासकर उनके कन्विक्शन के बाद, जेल जाने के बाद, उसमें थोड़ी सी एक गिरावट सी है या उसमें कुछ सेंध लगी है, उस पर भी हम बात करेंगे। और जैसा कि मनीषा ने बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी इस बार पॉपुलेशन है जो कि 29 साल से कम उम्र की है जो कि चुनाव में हिस्सा लेगी। खास रामपुर की बात मैं करूँ तो यहाँ पर पहली बार जो वोट डालने जा रहे हैं जिनकी संख्या 35,000 से थोड़ा ऊपर है, तो ऐसी एक बड़ी आबादी है जो पहली बार भी वोट डालेगी, उसमें बहुत सारे यूथ हैं। हम इस समय जहाँ पर खड़े हैं, एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, कॉलेज है ये, रज़ा पीजी कॉलेज रामपुर का, और वहाँ के कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान हैं जो कि एडवोकेट हैं, जुनैदुर रहमान साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम यूथ के मुद्दों पर, खासकर रामपुर के मुद्दों पर, इसके अलावा पूरे देश की जो राजनीति चल रही है उसमें किस तरह के उम्मीदें आपकी आने वाली सरकार से हैं, आपकी जो नेता यहाँ से चुने जाएंगे उनकी क्या, उनसे क्या उम्मीदें हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मैं एक मोटी मोटा छोटा सा एक जानकारी दे दूँ, और रामपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर 3 मुख्य पार्टियाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो सिटिंग उनके एमपी हैं घनश्याम सिंह लोध, उनको टिकट दिया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर शुरुआत में थोड़ी सी गफलत रही, उन्होंने मोहिबुल्ला नदवी साहब को अपना टिकट दिया है। उनको ये माना जा रहा है कि जिसको आज़म खान साहब चाहते थे टिकट देना, वो उनकी पसंद के असीम रज़ा, उनको नहीं देकर एक तरह से नाराज़गी पैदा की गई है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने जिशान खान को टिकट दिया। तो ये 3 मुख्य उम्मीदवार हैं जिनके बीच में ये चुनाव होने जा रहा है। मनीषा, मैं चाहूँगा जुनेद साहब के पास सबसे पहले आएँ और थोड़ा सा हमें रामपुर की जो ये लोकसभा सीट है इसकी तासीर के बारे में थोड़ा हमें बता पाएँ, और यहाँ के जो मुद्दे हैं लोगों के, यहाँ जो ज़रूरतें हैं। पिछला चुनाव हमने देखा कि यहाँ पर एक बाई इलेक्शन हुआ, और उसके पहले जो 2019 का चुनाव था यहाँ से आज़म खान साहब जीते थे और बहुत कन्विंसिंगली करीब 110,000 वोट से जीते थे। लेकिन उसके बाद हमने एक चीज़ देखी कि जब उनके इस्तीफे के बाद यहाँ पर 2022 में बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, तो वोटर परसेंटेज बहुत नीचे आ गया। भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली जो कि यहाँ का जो पूरा आंकड़ा है वोटों का, उस नज़रिए से अगर देखें तो बड़ा चौंकाने वाली बात कही गई, क्योंकि आम तौर पर यहाँ पर जो आबादी का जो वो है करीब 51% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं, और 49% के आसपास ऐसा है कि हिंदू वोटर है। तो
थोड़ा सा ये कहा जाता था, समझा जाता था कि रामपुर की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में झुकी हुई है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीता।
जो आप पिछले बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो विधानसभा का उपचुनाव था जो आजम खान की वजह से खाली हुआ था, उनके इस्तीफे की वजह से या उनके ऊपर जो केसेस थे, तो वो इलेक्शन जो हुआ था वो इलेक्शन नहीं था, उसको आप सिलेक्शन बोल सकते हैं या किसी तरीके से भी, वो जिस तरीके की वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं आप, जो मुस्लिम क्षेत्र थे या किसी विशेष समुदाय के क्षेत्र थे उनमें पुलिस ने काफ़ी सख्ती की, प्रशासन ने काफ़ी सख्ती की, वोटिंग हो ही नहीं पाई थी। शायद 10-12% तो शहर में, जहाँ आप इस टाइम पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, रजा डिग्री कॉलेज, ये भी एक, यहाँ भी वोटिंग होती है, यहाँ पर भी लोगों को आने नहीं दिया गया था, काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी, आपने भी देखा होगा, लोगों से आईडी ली गई थी, उनसे कहा गया था कि आप एक आईडी और लाइएगा, फिर एक आईडी और लाइएगा, जब वो लोग 3-3 आईडियाँ लेकर भी पहुँचे तब भी उसको फाड़ दिया गया और वोट डालने नहीं दिया गया, जो लोग बुरखे में आए थे उनको खास करके घरों से निकलने नहीं दिया, तो वो इलेक्शन इस तरीके से जीत लिया गया और शायद पहली बार विधानसभा में शहर से भाजपा जीती थी, तो इसलिए जीती थी कि यहाँ पर एक तरफा इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन ही नहीं हुआ था अगर कहा जाए तो, अगर सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। आजम खान के नाम पर उनके खिलाफ जो हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है जिस तरीके से, उस पर वोट पड़ने की उम्मीद है इस बार। कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट आजम खान का ही कहलाएगा इस लोकसभा में, समाजवादी का ही कहलाएगा। आजम खान ने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया है कि ये कैंडिडेट हमारी पसंद का नहीं है या इसका बहिष्कार करना है, कोई कहीं पर ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। जो लोग भी वोट करेंगे मुझे लग रहा है वो आजम खान के नाम पर, समाजवादी के नाम पर या अखिलेश के नाम पर ही वोट करेंगे इस लोकसभा की बात करें
तो। जो बहुत उठा पटक थी टिकट कंफर्म होने से पहले, वो स्थिति समाजवादी पार्टी को लेकर नहीं है और एक क्लैरिटी है लोगों के अंदर, आप ये कह रहे हैं?
लोगों के अंदर तो क्लियरिटी है, अंदर क्या हुआ है, उठा पटक क्या हुई है, सीतापुर जेल में क्या बात हुई आजम खान की, अखिलेश जी की, किसी को नहीं पता है। कोई ऐसा स्टेटमेंट भी बाहर नहीं आया है। पहले एक आया था कि हम लोग बहिष्कार करेंगे, आजम खान की तरफ से आया था, आसिम राजा ने फिर उसके बाद नॉमिनेशन कर दिया, तो वो बहिष्कार वाली बात खत्म हो गई थी, उनको टिकट नहीं मिला। अब जो नदवी साहब को टिकट मिला है, लोग उनका इलेक्शन लड़ा रहे हैं अभी तक जो पोजिशन है, और उनका इलेक्शन अच्छा लग रहा है।
बड़ी ऐतिहासिक सीट है एक नज़रिए से, यहाँ की पहली जो लोकसभा सीट थी उस पर हमारे देश के जो पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे, मानव संसाधन मंत्री थे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, वो यहाँ के सांसद थे, उन्होंने इस सीट को रिप्रेजेंट किया है एक टाइम पे। हम छात्रों के पास आते हैं मनीषा।
मेरा नाम मोहम्मद नावेद है, मैं इसी रजा डिग्री कॉलेज का छात्र हूँ और हम सब युवा हैं, तो युवाओं को राजनीति से जुड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग इस देश के जो विकास में भागीदार बनेंगे तो राजनीति को समझकर और राजनीति के से जुड़े जो फैसले होंगे वो अगर अच्छी तरह से लेंगे तभी जुड़ेंगे। और हम सब युवा हैं तो हम युवा जब वोट करें तो खास तौर से इस बात का खास ख्याल रखें कि हम जिस भी प्रत्याशी को चुने वो किसी भी पार्टी का हो, वो युवाओं का, उनके करियर का खास तौर से ख्याल रखें, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा को अच्छा कर सके। इसके अतिरिक्त हम जब युवा चुने अपने प्रत्याशी को तो ये खास ख्याल रखें कि वो भ्रष्टाचारी ना हो, किसी तरीके से दागी ना हो, क्योंकि अगर उसके खुद के दामन में दाग होंगे तो वो बेशक समाज के लिए कोई भलाई का कार्य नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं, अक्सर ये देखते हैं कि नेता संघर्ष के दिनों में बिल्कुल पैदल होते हैं, किसी पार्टी का उनके सर पर हाथ होता है, जनता का विकास करते करते उनका खुद का कब कई सौ गुना विकास हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो हम
भ्रष्टाचार की तरफ आपका इशारा है।
जी जी, तो हम ये कोशिश करें सभी युवा के इस तरह के प्रत्याशी को चुने कि किसी के दामन में कोई दाग ना हो, और ऐसा प्रत्याशी चुनो जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं का निवारण कर सके। छात्रों की जो आत्महत्या करने की संख्या है वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसी तरीके से मैं किसान परिवार से आता हूँ तो किसानों की आत्महत्याओं की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है, महंगाई दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो हमें इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अपना प्रत्याशी को चुनना होगा, क्योंकि जब किसी प्रत्याशी को चुनेंगे और सरकार बनेगी तो ऐसा नुमाइंदा हम संसद में भेजें जो इस बात को उठा सके, जो हमारे क्षेत्र की मूलभूत परेशानियां हो कि किस तरीके से हमारे क्षेत्र में जो जो समस्याएं हैं वो संसद में जाकर बेबाक तरीके से कह सके। तो इसी बात का ख्याल रखना है कि युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, अगर परीक्षाएं हो और भर्ती की परीक्षाएं हो उसमें आप नियंत्रण ही नहीं कर पा रहे हैं, कंटिन्यू पेपर आप लीक हो जाता है, आपका इतना बड़ा सिस्टम सब कुछ, हालांकि कार्रवाइयाँ होती हैं जो इस तरीके के असामाजिक तत्व होते हैं जो पेपर को आउट करते हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन छात्र का भविष्य सर पूरे पूरे साल तैयारियां करता है, उसके बाद आप देखते होंगे कि परीक्षा रद्द हो जाती है तो सर मायूसी हाथ लगती है। और फिर मैं हालांकि इस चीज़ के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि कोई भी छात्र छात्रा आत्महत्या करें, क्योंकि उनके माँ बाप होते हैं, परिवार रह जाता है, बड़ा दुख होता है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि किसी का भी परिवार ना उजड़े इस तरीके से।
ये इलेक्शन में जो हम सुन रहे हैं, और मैं आप सबकी इसमें राय चाहती हूँ, बहुत मीडिया में अगर हम सुने तो एमपी की बात कम हो रही है, ये बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो इस बारे में आप लोग क्या, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक एमपी का चुनाव कर रहे हैं आप अपने क्षेत्र की भलाई के लिए, अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए, या आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये ज़्यादा ज़रूरी सवाल है?
मैम, हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने या कोई भी एमपी बने, विकास होना चाहिए। विकास के साथ हमारा मुद्दा मेन यह है कि यहाँ पे हमारे रामपुर शहर में एक जॉब वैकेंसी बहुत कम है। बाकी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री कारखाना आए जिसमें हम लोग भी लगें, और उससे हमारे यहाँ की इकोनॉमिक को फ़ायदा हो, हमारी इंडिया को भी फ़ायदा हो। और ये छोटे छोटे मुद्दे हैं हम लोगों के, बाकी हमारा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी होना चाहिए या कोई और होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आए, बीजेपी आए या समाजवादी आए या आम आदमी पार्टी आए, कोई भी आए।
आप लोग सोचते हैं यहाँ के क्षेत्र की भलाई के बारे में कि यहाँ का प्रत्याशी क्या कर सकता है आप लोगों के लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू आपके लिए।
मेरा नाम मोहम्मद कैफ है, मैं बीएससी का छात्र हूँ, मैं भी रामपुर से बिलोंग करता हूँ, और मेरी राय यह है कि जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर बने वो देश का विकास करे, वो सामाजिक मुद्दों पर देखे, वो धर्म में किसी जाति में भेदभाव नहीं करे, सबको इक्वल समझ जाए। आज हमारे देश में क्या हो रहा है कि कोई बात होती है तो ज़्यादातर मुसलमानों के पक्ष में वो गलत ठहराया जाता है, जैसे मस्जिदों पे झंडे लगाना, मुस्लिम्स पे कई, इस बार भी होली पे आपने देखा हो कई मुस्लिम्स फैमिलीज़ को रोक कर उन पर रंगड़ा लगाया, तो सबको बराबर रखा जाए, तो ऐसा प्रत्याशी आना चाहिए। और यहाँ के एमपी की बात करी जाए तो यहाँ का एमपी आना चाहिए कि जो छात्रों के सपक्ष रहे, वो जैसे फतेह ने बताया कि यहाँ पे जॉब वैकेंसी बहुत कम है, यहाँ से ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, पीएचडी करने के बाद भी नहीं, कोई जॉब नहीं मिल पाती है, गवर्नमेंट जॉब का भी कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है। तो मेरा बस यही मुद्दा है कि छात्रों के हाथ में बात करी जाए, लेडीज़ के हाथ में करी जाए।
यहाँ पर जो कॉलेज में जिस तरह का माहौल है, आप लोग उससे कितना संतुष्ट हैं, कितना मुतमईन हैं कि ठीक है यहाँ पर अच्छा माहौल है, लड़कियाँ आती हैं पढ़ने लिखने और बहुत अच्छे माहौल में यहाँ से पढ़ लिख कर आगे जा सकती हैं, या फिर कोई और चीज़ें हैं जो कि कैंपस में आपको लगता है यहाँ सुधार होना चाहिए?
मेरे अकॉर्डिंग तो कॉलेज का माहौल भी काफ़ी ठीक है, टीचर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ रामपुर का माहौल भी ठीक है, और हम लोग आते हैं यहाँ स्टडी के लिए, और सेफली ये है कि जहाँ हम रोड वगैरह पे जाते हैं तो मतलब जैसे बॉयज़ वगैरह होते हैं तो छेड़ा छाड़ी वगैरह, हाँ इस टाइप से रहता है, और बाइक पे कुछ भी बोल करके चले जाते हैं और इस टाइप से।
तो एक पुलिस का प्रेजेंस या एक पेट्रोलिंग अगर हो तो आप लोग को थोड़ा ज़्यादा सेफ लगेगा?
यस मैम, यस 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 मैम, यस मैम। और यहाँ पर जो है काफ़ी मतलब कॉलेज का तो ठीक है, लेकिन यहाँ रोड वगैरह पे आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और लड़कियों के लिए मतलब वैकेंसी वगैरह निकालने, वैकेंसी आती हैं, पेपर्स वगैरह देते हैं तो वो लीक हो जाते हैं, और लीक होकर के फिर वो रद्द हो जाते हैं, और फिर काफ़ी टाइम लगता है, बच्चे मेहनत करते हैं, तो इसके लिए और ध्यान दिया जाए कि एग्ज़ाम मतलब लीक ना हो। अभी भी पुलिस का एग्ज़ाम लीक हो गया था, बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, सब मतलब पानी फेंक गया सब चीज़ों पर, बच्चे बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हैं कि हम ऐसे। यस यस मैम,
अच्छा ये इशू बार बार आ रहा है पेपर लीक का, और हर जगह आ रहा है, सिर्फ यूपी नहीं, हम जहाँ भी जाते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हर जगह। तो आप लोगों से पूछते हैं,
यूपी का एक आंकड़ा भी है, मैं एक देख रहा था 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में करीब 10 ऐसे एग्जाम्स हुए हैं जिनके पेपर लीक हो गए हैं और परीक्षाएं रद्द हुई हैं, तो एक बड़ा इशू ये जैसे बाकी स्टेट्स में है वैसे यहाँ पर भी निकल कर आ रहा है, उस पर हमें थोड़ा सा लोग भी आ जाने चाहिए पेपर लीक से,
क्योंकि स्टूडेंट्स कंप्लेन तो करते हैं लेकिन ये इलेक्शन में कभी मुद्दा नहीं नजर आता, क्योंकि कोई एमपी है जो उठा रहा है, मैनिफेस्टो में मेरे ख्याल से कांग्रेस ने एड्रेस करा है कि हम सकता
है। मेरा नाम रोहित है, मैं एमए का स्टूडेंट हूँ, जैसे कि बड़े भाई बघेल साहब ने बताया कि वो चुनाव नहीं हुआ था, ठीक है, तो पहली बात तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये एमएलए को एमएलए नहीं मानते रामपुर का, अगर आप पूछ लीजिएगा कि एमएलए नहीं मानते क्या, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं जो आज सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, महिला सेफ्टी, आप आज से 2 साल पहले या 5 साल पहले जिस टाइम गवर्नमेंट समाजवादी की थी, आप यहाँ का हाल देखते हैं, इतना बुरा हाल था, जो हिंदू लड़कियाँ बैठी हैं मेरी बहनें, वो कोई भी आने को तैयार नहीं थी, इतना भय का खौफ था, इतना डर बना था। आज भी आप देखेंगे पिछली सरकार के मुकाबले आज जो लड़कियां आ पा रही हैं वो पहले नहीं आ पाती थी, इतना खौफ बना दिया था इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से। बात रही बेरोजगारी की, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, भाई ने बताया बेरोजगारी, तो इससे पहले जो नेता कहा करते थे, अब नहीं है वो, अब तो माफिया हैं, पहले नेता कहा करते थे उन्हें, पहले वो नेता थे, उनने बहुत टाइम राज किया रामपुर पे, उनने सिर्फ फैक्ट्रियां जो थी उससे पहले हमारा रामपुर उद्योग नगरी रहना था, फैक्ट्रियां बंद कराने का काम किया, आप सर्वे करिएगा सारी फैक्ट्रियां उनने बंद करा दी।
सो आप क्लियरली समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है?
नहीं,
तो आप बताइए आप किसको, आपके लिए मुद्दे क्या है?
मुद्दे यही है फैक्ट्रियां जो थी वो क्यों बंद कराई गई, फैक्ट्रियां समय लगेगा कोई भी चीज के लिए है, समय लगेगा फैक्ट्रियां लगेंगी।
एक चीज मैं जो क्लियर जो करना चाहूंगी कि जो महिला सिक्योरिटी का इशू है इसमें हम हिंदू मुस्लिम ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक सिक्योरिटी का इशू है जो हर नेता कोई भी पार्टी से कोई भी रिलीजन से उनको देखना पड़ेगा, ऐसा हम बोलें कि सिर्फ
इस कॉलेज में, इस कॉलेज में तो हर हर जाति हर धर्म के लोग पढ़ते होंगे, तो अगर वो समस्या होगी तो सबके लिए होगी, सारी लड़कियों के लिए होगी, सारी लड़कियों के लिए होगी।
प्रत्येक धर्म के छात्र छात्रा पढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ का जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं यहाँ पर जो प्राचार्य महोदया है वो बताता चलूँ, वो भी महिला हैं, डॉक्टर दीपा अग्रवाल जी उनका नाम है। आप देखेंगे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जरूर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप टीचर्स की संख्या स्टाफ की संख्या देखेंगे 52 या 53 जितने भी टीचर्स हैं उसमें से मैक्सिमम, देखिए ये हमारे देश की खूबसूरती है कि जमहूरियत है ये हमारे देश की, के बेशक आपने सही कहा कि चुना हुआ व्यक्ति है, हम सबका सम्मान करते हैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं, लेकिन यहाँ पर जब सुरक्षा की बात आती है तो यहाँ पर महिलाएं, चाहे वो दीपा मैम हो जैसा मैंने आपको बताया प्रिंसिपल हैं, और जागृति मैम हैं, बाकी और भी दीगर टीचर्स हैं, काफ़ी महिलाएं यहाँ पर हैं, टीचर्स भी ज़्यादातर, मैं लव भी यूज़ नहीं करना चाहता जो भाईजान ने हमारे किया कि अलग समुदाय से हैं, तो ज़्यादातर संख्या उन्हीं की है।
जो मुस्लिम बहन मेरी बेटी है उससे ही पूछ लिया, उससे पहले आप कितनी बार कॉलेज आई थी?
तो आपको लगता है इम्प्रूव हुआ है सिक्योरिटी?
बहुत फर्क है, आप देखो कॉलेज में क्या शांति का माहौल है, पहले नहीं था बिल्कुल भी।
और इशू वाइज आपके लिए, आप युवा हो आप वोट करेंगे यहीं से, आपके लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या, जैसे पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा आ रहा है, लेकिन कोई भी एमपी इस मुद्दे को ऐसे मुझे तो नहीं लगता प्रचार में उठाते हैं, कुछ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी आया, देखते हैं बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या बोलेगा एसपी का।
कई एमपीओ ने, कई एमएलओ ने अपने लेटर पेड से माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत की गई थी, और उस शिकायत की वजह थी जो पेपर रद्द हुआ था, उसके जो आरोपी है उसे भी पकड़ा गया है। तो एक सिस्टम होता है, सिस्टम को चलाने में समय लगता है, वो सिस्टम की प्रक्रिया चालू है और वो रहेगी, जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी।
वो तो आपने मुझे स्पोक्सपर्सन जैसा जवाब दिया, बट एज अ युवा, एज अ युवा आपके लिए,
हां मेरे लिए समस्या
पार्टी, चलो छोड़ो जो भी है, लेकिन मेन इशू एज अ युवा,
मेन इशू यही बताया भाई ने, बेरोजगारी का, बेरोजगारी थी नहीं, खत्म करी गई है, बेरोजगारी खत्म करी गई है, फैक्ट्रियां बहुत थी खत्म कर दी गई, हमारे हाथ पैर जो बेरोजगारी से काटे गए थे वो पूर्व नेता, मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनने बेरोजगारी खत्म करी, उनने हमारे हाथों में रिक्शा देती है।
बेरोजगारी भी एक इंडिया में हर जगह की मुद्दा, इनफैक्ट अभी एक डेटा आया है इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें काफ़ी अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स हैं कि 83% जो जॉबलेसनेस है उसमें से युवा हैं सबसे ज़्यादा, और जिन्होंने अपना प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन करा है, तो युवा खासकर जो पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है।
मैं इसी रेड डिग्री कॉलेज का छात्र हूँ, मैं सबसे पहले तो ये देखना चाहता हूँ कि सांसद भवन और विधानसभा में कोई युवा नेता आज तक बैठा ही नहीं, क्यों नहीं बैठा? रामपुर से समाजवादी से कैंडिडेट खड़ा करा है, भाजपा से खड़ा करा है, और भारतीय जनता पार्टी से खड़ा करा है, जिसने भी खड़ा करा है ये तो पता नहीं मुझे किसने खड़ा करा है, उन्हें कोई युवा नेता चेहरा नहीं दिखता, ये एजेड लोग ही दिखते हैं जो युवाओं के हित की बात नहीं कर सकते, युवाओं के हित की बात नहीं कर सकते। जब तक मैम आप युवाओं को जब पार्लियामेंट में या विधानसभा में नहीं बिठा लेंगे कोई युवाओं के हित की बात नहीं हो सकती। उनको क्या करना है, चार जनों के बीच में बैठना है, चाय पीनी है और गप्पे लड़ाने हैं, बस यही करना है, यही करना है मैम। जब तक युवा अगर नहीं पहुंचेगा अपनी बात पे तो हम क्या कर सकते हैं?
रामपुर में बहुत चिकन कॉर्नर है, कहीं भी आप जाइएगा 80% रिक्शे वाले मिलेंगे वहाँ शाम को। अगर गरीबाई है, महंगाई है, तो वो लोग नॉनवेज कैसे खा रहे हैं, कैसे खा?
गवर्नमेंट क्या करे?
पहले जो किराया मेरे ज्वाला नगर से यहाँ तक का 10 रुपये हुआ करता था, आज 30 रुपये है। तो महंगाई है, तो उससे नीचे लोगों को फ़ायदा हुआ है, रिक्शे वालों को फ़ायदा है, जो रिक्शे वाला 100 रुपये कमाता था आज 1000 रुपये कमाता है।
ये एकदम अलग है, क्योंकि इन्फ्लेशन और इस चीज़ें इस तरह से नहीं नापी जाती हैं कि कहीं अगर खाने के लिए रोक, क्योंकि आपके पास ये आंकड़ा नहीं है इस समय कि कितने लोग उस चिकन कॉर्नर पर नहीं पहुंच पाते, उनको कोई नहीं जानता या वो कहीं रजिस्टर नहीं है आपके निगाह में।
मैं बड़े भाई की बात से सहमत हूँ कि हमारे जो पहले मंत्री थे उन्होंने फैक्ट्रीज बंद कराई, तो इस गवर्नमेंट को भी 10 साल हो गए, 2014 में बनी थी और 2024 चल रहा है, तो 10 साल में कुछ विकास नहीं हो सकता था। वो गलती थी, हम सब मानते हैं कि फैक्ट्रीज बंद हुई, तो उसके बाद के 10 साल में कुछ विकास नहीं हुआ, 10 साल बाद गवर्नमेंट बनेगी तब विकास होगा क्या? तब गवर्नमेंट बनेगी क्या?
आपने कहा रिक्शा बांटी, तो रिक्शा किस बीकॉम के छात्र को बैठी, रिक्शा किस मास्टर्स के छात्र को बैठी? रिक्शा सिर्फ ओल्ड
जो रिक्शा वाले थे उन्हीं
को बैठी थी, लाइसेंस देख के उनका जो पैरों वाली रिक्शा है उनका लाइसेंस है। उसके बाद और भाई ने कहा कि 10 रुपये किराया, तो इनको रिक्शा किराया दिखा, इनको पेट्रोल की कीमत नहीं दिखी। जिस टाइम हमने बाइक चलाना सीखी तो पेट्रोल 60 रुपये लीटर था, आज पेट्रोल 96
हमने हम आगे ले जाना चाह रहे हैं इस बातचीत को यहाँ से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट बार बार प्रचारित करती है, उसमें आपको कहा जाता है कि गैस सिलेंडर दे दिए गए, आवास योजना दिया गया, 80 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं। तो एक तो मोटी मोटा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक जनरल सबका ओपिनियन हाथ उठा के भी बोल सकते हैं कि अगर जो 80 करोड़ लोगों को अगर हमें सरकार से अनाज लेके पेट भरने की नौबत है या सरकार दे रही है ऐसा उसका दावा है हर मंच से, तो ये किसी देश के लिए जो जिसके बारे में आप बता रहे हैं या कोई सरकार दावा कर रही है कि हम बहुत समृद्ध हो गए, हम बहुत विकास कर चुके हैं, बहुत आगे बढ़ गए, उसके लिए ये कोई अच्छी तस्वीर है कि उसकी 80 करोड़ जनता सरकार के अनाज पर? कितने लोग समझते हैं? और उसके बाद मैं आऊँगा कि इसमें कितने स्कीम्स हैं, उसके लाभार्थी या उस योजनाओं से कितने लोग लाभार्थी हैं उसके, आप उसके से सहमत हैं?
सर, जिसमें सब ज़्यादातर ऑनलाइन होता है सारा, और ज़्यादातर ये देखा जाता है जब भी साइबर कैफ़े पे CSC सेंटर पे जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये दिखाया जाता है कि वेबसाइट काम नहीं कर रही है। अभी एक हैं थोड़े कमज़ोर हालात के, उन्होंने मुझसे कहा था कि एक वो चल रही है योजना सिलाई मशीन की, तो उसमें कहा था कि रजिस्ट्रेशन कराइए। अब मैं सर एक हफ्ते से CSC सेंटर के पास जाता हूँ, वो कहता है कि वेबसाइट काम नहीं कर रही है। तो सर ये दिखाया तो जाता है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं सर, पर उसमें रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज़ अनाज के बारे में बात आई थी, सर ये मेरे हिसाब से तो गलत है कि अनाज के ऊपर डिपेंड है, सरकार दे रही है अनाज, हमारे पास काम नहीं है इस वजह से हम सरकार का अनाज ले रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। हमारे पास काम हो, हम खुद कमाते हों, तो हमें क्या ज़रूरत है? और सरकार को भी ये करना चाहिए कि वो इस चीज़ को मजबूत करे कि आदमी अपनी खुद जेब भरे।
कि हम ना जो मेन मुद्दे हैं उन पर बात नहीं कर रहा, हम हिंदू मुस्लिम में बात कर रहे हैं किसी पार्टी को लेकर, लाइक BJP है जी, मैं बताऊँ लाइक BJP है तो हिंदू पार्टी है, समाजवादी या कोई और पार्टी पार्टिकुलर तो वो मुस्लिम पार्टी है। हम इस चीज़ पे या युवा हो कोई भी हो इस चीज़ को लेकर चलना ही नहीं चाहिए, हमें मुद्दे लेकर चलना चाहिए कि क्या मुद्दे हैं, हमारे लिए क्या बेहतर होगा इन फ्यूचर, हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है, उन चीज़ को लेकर चलना चाहिए। तो ये हिंदू मुस्लिम वाला पक्ष हमें हटा देना चाहिए, और इसके अंदर जो जहर घोला गया हमारे पूरे इन्वायरमेंट में उसके अंदर से अहम भूमिका मीडिया की है। मीडिया ने सारी चीज़ें दिखाई हैं, सारी चीज़ें छुपाई हैं। और जहाँ तक की महंगाई की बात है, इशूज़ की बात है, तो आपने देख लिया जो हमारी बेसिक नीड्स हैं लाइक फूड हो गया, गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब पे रेट बढ़े, सब पे बहुत हाईली रेट बढ़े, जिसकी कोई वो ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है, तो वो चीज़ें गलत हैं, वो चीज़ कम होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टिकुलर सरकार रहे, किसी भी समुदाय की सरकार हो, कुछ हो, लेकिन जो बेसिक नीड है इंसान की, सबसे बेसिक नीड, कपड़े पे GST बहुत बढ़ गई है, गरीब आदमी की सबसे मुश्किल चीज़ है, खाना खाने के लिए उसके पास नहीं है। और जो आपने बात कही कि राशन अगर कोई गवर्नमेंट दे रही है 80,000 इतने लोगों को, तो वो ठीक है या गलत है? मेरी नज़र से तो वो सर जी गलत है, क्योंकि वहाँ पे आप अच्छे काबिल दिखते हैं, जहाँ पे कि आपके जो पीपल हैं, जो आपका कंट्री के लोग हैं, वो अपने आप से खुद से अपनी जो नीड्स हैं वो पूरी कर लें, आप उनके अंदर वो चीज़ हो, आप उनको वो प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहे किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के ऊपर।
अगर सरकार द्वारा कोई योजना लाई जाएगी तो दोनों ही पक्षों को, दोनों ही समुदायों को, सर जो भी लोग हैं उनको मिलेगा, और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, लोगों के मकान बने हैं, मैंने भी देखा है कि लोगों को मकान मिले हैं। किसानों को कितना लाभ मिल रहा है, वो कोई किसान ही है जैसे बैठे हुए हैं, किसान के बच्चे बैठे हुए हैं, वो ही बता पाएंगे कि किसानों को एक्चुअल में उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा
है। स्कीम्स के प्रति यहाँ पे जो लोग हैं उनका मतलब आपको लगता है लोगों के गुडविल है गवर्नमेंट के लिए, जैसे आपने कहा लोगों को मिला है,
सिर्फ यहाँ पर जो मकान मिले हैं वो तो लोगों को उसके प्रति तो गुडविल है कि हमको लोगों को छत मिली है या शौचालय भी मिले हैं, बाकी कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिस पर जो वोट जाएगा। अच्छा। वोट यहाँ पर शायद स्कीम पर नहीं जाएगा, वोट और बहुत सी परेशानियां जिन पर जाएगा।
देखिए योजनाएं किसानों के लिए एक तरीके से कहावत है कि धोती खोल के पगड़ी बांध दी, तो उसमें यह है कि कुछ जगह योजनाएं जैसे वो पीएम निधि लोगों के खातों में आई है, तो उसके अलावा जो खाद वगैरह थे वो महंगे कर दिए।
क्या तक आई है?
जी बिल्कुल आई है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ सर, अपनी कंप्लीट कर लूँ मैं बात, बिल्कुल आई है। इसके अलावा जो सरकार की वो योजना भी अच्छी है जो 5 लाख तक का इलाज है
जी,
वो भी अच्छी योजना है सरकार की। लेकिन इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि किसानों को अगर इतना ही लाभ सरकार दे रही है तो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं किसान?
मैं थोड़ा सा लड़कियों से हम पूछ लें कि ये योजनाएं हैं उसमें उनसे क्या उम्मीदें आपको हैं सरकार से, जैसे खासकर अगर एजुकेशन को देखें तो कुछ बहुत ज़्यादा अभी तक कोई घोषणा छात्रों के नज़रिए से किसी पार्टी में नहीं की गई दिखती है। एक मेरे ख्याल से अभी तक जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि जो पेपर लीक किया इस तरह की घटना है उसको रोकने की बात होगी, और दूसरा एक उन्होंने घोषणा की है कि जो अप्लीकेशन की फ़ीस है वो शायद उन्होंने माफ़ करने का वो किया है। तो ये कितनी बड़ी चीज़ है आप एज अ स्टूडेंट आप लोगों के लिए, क्या आप लोगों को लगता है कि बाकी नेताओं से भी आपको इस तरह कमिटमेंट लेंगे, बाकी पार्टियों से भी आप इस तरह की उम्मीद करते हैं?
पेपर फॉर्म फिल करने की जो फ़ीस होती है वो जैसे इस बार यूपी पुलिस के फॉर्म फिल करने की 400 रुपये फ़ीस थी, और जैसे कि और एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उनकी फ़ीस वगैरह होती है, अब जो है उसको कम कर दिया जाए। जैसे 400 रुपये बहुत ज़्यादा हो गए उसके अकॉर्डिंग, और सरकार को जो है बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका मतलब लड़कियों को लाभ मिलना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया था कि सिलाई मशीन वाली योजना थी, तो उसमें भी हमें मतलब फॉर्म फिल कराने के लिए गए थे तो उन्होंने ये बोल दिया था कि साइट नहीं चल रही है, ये उस टाइप से इश्यूज बता देते हैं। तो इसका मतलब योजना आ जाती है लेकिन उन पर काम किया जाता है, मतलब ऐसा होता है कि 50% लोगों का हो जाता है और 50% लोग रह जाते हैं।
अगर इसको छोड़ दिया और एक जनरल पूछे कि और इस तरह की कौन सी योजनाएं हैं जो पिछले 5 सालों में आप लोगों को आसानी से मिली है सरकार की तरफ से, जैसे घर की बात हुई या शौचालय की योजना थी या गैस की योजना थी, आयुष्मान योजना, इसमें से कुछ योजनाओं के जिक्र आप लोगों तक पहुंचा होगा?
यस सर, हाँ, आयुष्मान जो कार्ड बने हैं उनकी योजनाएं जो है मतलब लाभ मिला है, और हाँ टॉयलेट्स भी बने हैं गाँव में, और जो कॉलोनियाँ आती हैं वो भी बनी हैं, और जो मतलब बहुत सारी योजनाएं हैं मिली हैं उनका लाभ मिला है। किसान योजना जो है उसकी भी किस्त वगैरह आती है, और काफ़ी योजना है।
राशन किसके लिए होना चाहिए, जो फ्री वाला राशन है वो किसके लिए होना चाहिए? गरीब के लिए होना चाहिए ना। एक डिपो पे राशन लेने आ रहा है, गाड़ी कितने की ला रहा है? 3.5 लाख 4 लाख की बाइक, वो कहाँ? बिल्कुल मेरे कॉलोनी में 4 डिपो है, मेरे कॉलोनी में 4 डिपो है, को मिली रहे हैं। वो किस तरीके से गरीब हुआ?
अच्छा।
2 रुपए किलो वाला गेहूं लेने आ रहा है, 2.5 लाख 2 लाख की गाड़ी लेके आ रहा है, तो किस तरीके से गरीब होगी ये बताइए मैम। सबसे पहले गवर्नमेंट
इसका मुनाफा लोग उठा रहे हैं,
बिल्कुल मैम इसका मुनाफा लोग उठा रहे हैं।
कि राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है अपने घर परिवार बाकी आसपास जितना भी रिश्तेदारों में, कि राम मंदिर को के आधार पर वोट डालेंगे लोग, उनको प्रेरित करता है, सबसे पहले आप बताएं।
देखिए मजहबी जो चाहे मस्जिद हो मंदिर हो, मेरा टिप्पणी करना उस पर उचित नहीं है, सबकी आस्था का विषय है। मुद्दा हम जब से पैदा हुए इबादत कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी इबादत करते थे, मंदिर जाते थे मस्जिद जाते थे, अलग अलग धर्मों के हिसाब से जो भी मान्यता है, जो मंदिर जाना चाहते थे वो मंदिर जाते थे, जो मस्जिद, विषय हमारा ये होना चाहिए, मुद्दा ये होना चाहिए जो हमारा रोज़गार है, सेफ्टी है, विकास है, सड़कें हैं, पानी है, अच्छी शिक्षा है, इस अस्पताल हैं।
राम मंदिर कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है सर, जैसे कि राम मंदिर को इतना पैसा लगा करके बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग तो देखा जा सकता है कि उसमें इतना पैसा लगाया गया है, और उसके अलावा अगर उसमें इतना पैसा ना लगाया जाता, उस पैसे को हम गरीबों में बांटते या गरीबों को कुछ रोज़गार देते उस पैसे से, तो बहुत अच्छा लगता और बहुत मतलब हमारे जो पॉपुलेशन है बहुत खुश होती। इतना ये नहीं है कि राम मंदिर बना करके इतना बड़ा खड़ा कर दिया तो सब वहाँ जा करके पूजा करें आस्था करें, इससे कोई वो नहीं है। अपने मन में आस्था रखें तो वो सबसे बड़ा वो है हमारे लिए।
एजुकेटेड बंदे के लिए, पढ़े लिखे के लिए कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है वोट करे, उसको अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर चुनना चाहिए, क्योंकि उसको देखना चाहिए कि उसका फ्यूचर कौन सिक्योर कर सकता है। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है इलेक्शन के लिए हमारे लिए कोई।
हाँ जी सेम है।
अभी बहन ने बताया है कि चंदा इतना बड़ा मिल रहा है, तो किसने चंदा दे दिया? हमारी ताकत थी हम चंदा दे पाए, आपकी ताकत आप चंदा के बना लो, ये तो गलत बात है ना कि आप इतना बड़ा मंदिर बनाया है। उससे इससे पहले
राम मंदिर की वजह से बहुत बहुत सारे
लोग बहुत पड़ेगा।
अच्छी बात है कि एक राम मंदिर बनने के बाद वो जो राम मंदिर पर इलेक्शन होते थे या बाबरी मस्जिद पर होते थे अब वो खत्म हो जाना चाहिए, अब वो इशू नहीं होना चाहिए। वो मंदिर बन गया, ठीक है, अच्छी बात है, मंदिर बन गया, भगवान श्री राम का मंदिर बना है, कोई ऐसे तो नहीं है कि कोई गलत चीज बनी है, तो वो इशू खत्म हो जाना चाहिए। अब राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठना चाहिए। राम मंदिर बन गया, उसका उद्घाटन हो गया, लोग जाएंगे उसमें अपनी आस्था के हिसाब से पूजा करेंगे।
कुछ असर है उसका?
नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ असर है, क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर का कुछ असर नहीं होना चाहिए। अब हिंदू वोटर्स को अगर देना है तो वो इन मुद्दों पर दे सकता है वोट, लेकिन अगर पढ़ा लिखा आदमी अगर इस बात में वोट देगा राम मंदिर पर या बाबरी मस्जिद पर, तो वो मुद्दा नहीं होना चाहिए।
शुरू से हम जो बात कर रहे हैं थोड़ा कहीं ना कहीं हमारी डिस्कशन हिंदू मुस्लिम पे आ जा रही है, और इसमें मीडिया का इन्होंने बोला बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप देखें पिछले 4-5 साल से जैसे खबरें दिखाई जाती हैं, हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम एंगल दे दिया जाता है, हर चीज़ को जिहाद बता दिया जाता है। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? एक तो आप लोग ये बताइए, आप लोग चैनल देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, और किसको देखते हैं, और आपको लगता है कि न्यूज़ आप लोगों के मुद्दे उठाता है?
पहले तो अपने मीडिया का जो किरदार है उसमें अपने शेर से कहूँगा कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा और जो नहीं हुआ होगा वो अखबार में आ जाएगा। तो मीडिया के हालात इस वक्त ये हैं, हालांकि हमारा मजबूत स्तंभ है लोकतंत्र को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए मीडिया की अहम जिम्मेदारी है।
रामपुर का जो माहौल रहा है अब तक जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, हिंदू मुस्लिम वाला बिल्कुल माहौल नहीं है, यहाँ आपस में सब में बहुत प्यार मोहब्बत है। लेकिन तब से ये बीजेपी की सरकार आई है, मैं बीजेपी सरकार को भी इसमें वो नहीं कर रहा, क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन जब से ये मीडिया का रोल आया है हिंदू मुस्लिम करने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं 10% इम्पैक्ट पड़ गया है लोगों के ऊपर हिंदू मुस्लिम को लेकर। तो मीडिया
की प्रकार का इम्पैक्ट अगर
ये कि अगर ये मुसलमान है तो ये हमारे खिलाफ है, अगर ये हिंदू है तो ये हमारे खिलाफ है, एक बार वो वाला इम्पैक्ट पड़ गया, आपस में जो भाईचारा था वो चीज़ खत्म हो गई है कहीं ना कहीं 10%। वो चीज़ आपने यहाँ पे ऑब्जर्व कर ली होगी इतनी देर के अंदर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ
कि मैम नीति थी कि वो बांट और नीति करो राज करो, तो और कुछ नहीं है, सभी नेताओं के आपस में अच्छे संबंध है, लेकिन समाज में उन्होंने किस तरीके से जहर घोल सके वो
जो मेन चीज़ें होती हैं वो मीडिया में दिखाते नहीं है, जिसकी वजह से लैकिंग हो जाती है नॉलेज की लोगों को। मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ, कुछ मीडिया ने कवर ही नहीं किया। अब हम ये लोग बीजेपी वाले ज़्यादातर बात करते हैं कि हम सुरक्षा को लेकर बात करते हैं महिला की, तो वहाँ पर ही तो महिलाओं को बहुत कुछ किया गया जो मैं बोल भी नहीं सकता, उस पर किसी ने बात की तो मीडिया ने कवर ही नहीं किया।
जो ये जिहाद टाइप न्यूज़ आती रहती है उस पर आप क्या असर पड़ता है?
जिहाद को नहीं, मैं मीडिया को बस यही कहना चाहूँगा, मीडिया जो दिखाने की चीज़ होती है, आपने सुना होगा एक टूरिस्ट आए थे हस्बैंड वाइफ, उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ किस मीडिया ने दिखाया? हमने सोशल मीडिया पे देखा, हमने रील्स पे देखा, और आज तो मीडिया पे मुझे लगता है 95% भरोसा नहीं करता, हम खुद नहीं करते, हम यूट्यूब खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, कोई न्यूज़ आती है हम खुद कहते हैं फेक होगी।
अरे 3 साल की उम्र है, बीपी बढ़ा हुआ रहने लगा मीडिया की वजह से, देखते हैं तो गुस्सा आता
है।
तो ये चलिए तो मैं ये सोचना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग में वो बात क्यों हुए, तो मीडिया को उस पर काम करना चाहिए, क्यों हम गूगल और यूट्यूब खोलते के साथ कोई न्यूज़ आती है तो हम सोचते हैं कि फेक है
जी। मैं और इस चीज़ का जो इम्पैक्ट पड़ा है मीडिया पे बहुत पड़ा है, अब ज़्यादातर लोग मीडिया चैनल बंद कर रहे हैं, देखना यूट्यूब को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, और यूट्यूब पर दो वैरायटी है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जो नॉलेजेबल बंदा है किसी पार्टी को रिलेटेड लेंगे वो कि ये पार्टी
जी, जी। बहुत बढ़िया चीज़ है, आप लोग भी न्यूज़ लॉन्ड्री यूट्यूब पर देखा कीजिए जैसे
जी जी जी
हाँ आप देखिए
सर, ये मेरे हिसाब से तो ये पूरा टोटली एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ये जो पार्टी चल रही होती है उसी का एडवर्टाइजमेंट होता रहता है मीडिया के जरिए, और बाकी जो अपोजिशन होता है उसका तो फेस ऐसा होता है कि जो छुपा दिया गया, ज़्यादातर मुद्दे ज़्यादातर चीज़ें सब जो पार्टी उसमें होती है सप्ताह में होती है उस चीज़ का वो बार बार उसका ये चल रहा है वो चल रहा है, अपोजिशन जो कर रही होती है या वो जो कुछ दिखाना चाहती है वो उस चीज़ को दिखा बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं।
नहीं तो जैसे अगर ये जो मीडिया के साथ में प्रॉब्लम दिख रही है आप लोगों को, आपको लगता है कि इसको आप सब लोगों से ये सवाल है कि इसको किसी तरह से आप लोग इसको बदलने की कोशिश कर सकते हैं या किसी कोई बदलाव का वो बन सकते हैं, या आप लोगों को लगता है कि अब हम तो मजबूर हैं जो आ रहा है वही देखेंगे?
सर ये इस चीज़ को यूट्यूब से कवर कर रहे हैं हम लोग कि यूट्यूब जो होता है उस पर हम अपोजिशन को भी उनका अलग चैनल हो गया और जो हमारा टीवी न्यूज़ चैनल है उसको दोनों चीज़ों को देखने के बाद एक हम अपना ओपिनियन निकालते हैं कि ये चीज़ ठीक है ये चीज़ गलत है।
मीडिया दिखाती है, कुछ चैनल दिखाते हैं कुछ नहीं दिखाते, ऐसा नहीं सभी चैनल हिंदू मुस्लिम दिखा रहे हो। हिंदू मुस्लिम दिखाने की वजह क्या है? जैसे कि हम लोग बैठे हैं हम हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करें, दिखाया कौन? आप कैसे दिखा दोगे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करें? करने वाले तो हमारा आप ही है ना, करते तो हम ही हैं,
ब्लेम तो व्यूअर्स का है।
अब कहने को तो आपका तो काम दिखाना है ना, अब हिंदू मुस्लिम तो हम कर रहे हैं।
सो वन इम्पोर्टेंट इशू एंड इट्स हार्टनिंग टू नो कि भाई
मीडिया में तो हिंदू मुस्लिम होता रहता है, पॉलिटिशियंस भी वोट के टाइम करते हैं, लेकिन अगर यूथ ये समझ जाए कि इससे ज़्यादा बड़े इश्यूज हैं हमारे लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है इलेक्शंस के लिए।
ये हमारा पहला इलेक्शन शो था आज रामपुर के रज़ा पीजी डिग्री कॉलेज से, और बहुत सारे बात हमने बात स्टूडेंट के साथ की, अलग अलग उनके मुद्दे क्या थे, किन मुद्दों के ऊपर उनके जो आने वाले चुनाव हैं वो प्रभावित होने वाले हैं। ये हमारा पहला इलेक्शन शो था, आने वाले समय में बहुत सारे और शोज़ 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे उससे पहले हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, और ये पूरा का पूरा अनदर इलेक्शन शो का जो सीरीज़ है आप तक आपके ज़रिए पहुँच रही है, आपके समर्थन से पहुँच रही है। न्यूज़ लॉन्ड्री के इस इलेक्शन फ़ंड को मदद करें, हमारे छोटे छोटे कई सारे इलेक्शन फंड इस समय चल रहे हैं, उनको मदद करें, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से चलता है। किसी भी तरह का विज्ञापन ना तो कॉरपोरेट का ना किसी राजनीतिक दल का हम लेते नहीं हैं, तो इसलिए भी क्योंकि हमारा मानना है कि जब पत्रकारिता में आप इन्वेस्ट करेंगे, आप निवेश करेंगे, तो पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह होती जाएगी।
और इलेक्शन सीजन में सबसे ज़्यादा पैसा एक जो कमाते हैं वो मीडिया का एक वर्ग होता है, क्योंकि बहुत सारे एड्स आते हैं, सारी पार्टीज एड्स करती हैं, प्रचार देती हैं, वो सारे एड्स हमने खारिज कर दिए हैं, हम कोई भी एडवर्टीजमेंट्स नहीं लेते हैं, ताकि हमारा मेन एम ये रहता है कि हम जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाएं और कोई भी पावर में हो उनसे हम क्वेश्चंस पूछ पाए। आई थिंक यहाँ पे घूम फिर के हर स्टूडेंट के दिमाग में पेपर लीक एक बहुत बड़ा इशू है, वो ही यहाँ पे निकल के बहुत आया,
बेरोजगारी, पेपर लीक।
हाँ, लेकिन यहाँ पे एक टेंशन नजर आ रही थी हमें, वो हिंदू मुस्लिम वाला जो टेंशन है रामपुर, जैसे आपने बताया
एक बंटवारा था,
50% ऑलमोस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पे, बीजेपी जो जीत रहे हैं काफी टाइम से, ये भी एलिगेशन लगाए गए कि जिस चुनाव में वो जीते वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग टैक्टिक्स यूज करी गई, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सख्त रवैया था लोगों के साथ, कुछ लोग वोट नहीं कर पाए, तो ये कुछ एलिगेशंस हैं, थोड़ी नाराजगी।
बातचीत ऐसा निकल के आया, जो हमारे साथ यहाँ के एक रामपुर के स्थानीय एक बाशिंदे थे, उन्होंने भी हमें इस बात पर जोर देकर बताया कि किस तरह से जो बाई इलेक्शन था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सख्त रवैया खासकर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पर अपनाया, जिसकी वजह से उनके लोग या मुस्लिम इलाकों से लोग वोट डालने के लिए नहीं निकल पाए। और ये नंबर्स में जो वोट ओवरऑल नंबर है उसमें भी दिखता है, जब 2019 का जो नंबर था उसमें करीब दो पहले और दूसरे पायदान की पार्टियां थी उनके बीच में कुल 1,000,000 वोट पड़े थे, और अगर आप बाई इलेक्शन के नंबर्स देखें तो उसमें वोट का परसेंटेज घट के करीब 6.5-7 लाख के आसपास आ गया, तो 3.5-4 लाख वोटों का गिरावट एक चुनाव में, ये बताता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई।
तो ये था हमारा शो रामपुर से, रामपुर विल वोट इन द फर्स्ट फेज April 19, और इसके बाद हमारे रास्ते अलग होने वाले हैं।
मैं यहाँ से जाऊँगा रामपुर के बाद उत्तराखंड, देहरादून, हरिद्वार जाएंगे, वहाँ पर आप तक पहुँचाएंगे एक अनदर इलेक्शन शो के कुछ और हिस्से। इसके बाद मैं वहाँ से निकल कर जाऊँगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता है हम, और कृष्णानगर है, रानाघाट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं जादवपुर, यूनिवर्सिटीज़ में भी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी वहाँ से वहाँ के छात्रों के साथ आप तक एक शो पहुँचाएँ।
और मैं जाऊँगी कोचिन, कोचिन के बाद वायनाड, बहुत इंटरेस्टिंग कैंपेन रहेगा वहाँ पे, वायनाड के बाद मैं जाऊँगी कर्नाटका, कर्नाटका में हम बैंगलोर जाएंगे, बैंगलोर भी जा सकते हैं, और उसके बाद हम पहुँचेंगे दिल्ली, और फिर हम दोबारा मिलेंगे पटना में।
पटना में तो पटना में 6ठे और 7वें फेज में हम पटना और ईस्ट यूपी जो कि बनारस प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके आसपास के इलाकों को कवर करेंगे, वहां से आप तक अनदर इलेक्शन शो पहुंचाएंगे।
बनारस बहुत एक हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट रहेगा, वहां पे धन्या राजेंद्रन भी हमें ज्वाइन करेंगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट शो, इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द कमिंग एपिसोड्स, कीप वॉचिंग अनदर इलेक्शन शो, आई विल सी यू इन पटना, बाय
बाय।
This election season, your right to choose puts you at the heart of it again.
We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you.
Simply log on to newslaundry.com/2024 election fund and choose an amount of your choice for the reports of your choice.